नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को डायल अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवाओं की गुणवत्ता सेवा पर नियमों को निरस्त करने के लिए मसौदा जारी किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि अब कोई डायल अप ग्राहक नहीं है और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस प्रौद्योगिकी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। डायल अप कनेक्शन उस समय स्थापित किया जाता है जब दो या अधिक संचार उपकरण इंटरनेट सेवा प्रदाता से कनेक्ट करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करते हैं। कई सुदूर क्षेत्र इंटरनेट डायल अप कनेक्शन पर निर्भर करते हैं क्योंकि कम आबादी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और केबल दुर्लभ हैं। लीज्ड लाइन फिक्स्ड बैंडविथ के साथ एक अलग इंटरनेट कनेक्शन है। ये छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों को सुरक्षित, भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल तरीके से इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर तय करने वाली मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को यहां शुरू हुई। ऐसा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक में MCP प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25% की और वृद्धि का फैसला कर सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके साथ ही मई 2022 से शुरू हुआ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम जाएगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के दौरान विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी। 6 सदस्यों वाली समिति ने ब्याज दर पर क्या फैसला किया है, इस बारे में गवर्नर बृहस्पतिवार को बताएंगे। महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक मई 2022 से रेपो दर में 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है। इसके बावजूद मुद्रास्फीत ज्यादातर समय रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रिक उपकरणों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होने से उसके वाहन उत्पादन पर असर पड़ सकता है। MSI ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति के बारे में अब भी कोई अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वित्त वर्ष 2023-24 में भी उत्पादन की संख्या कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। कंपनी ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 में भी उसके उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समुचित आपूर्ति न होने से असर पड़ा था। इस बाधा के बावजूद कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 19.22 लाख वाहनों का उत्पादन किया, लेकिन वो 20 लाख के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने से चूक गई। मारुति ने कहा कि मार्च में उसका कुल उत्पादन 1.54 लाख वाहन रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 6% कम है। उत्पादन में गिरावट की ज्यादा मार यूटिलिटी वाहनों पर पड़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिक्री मार्च में सालाना आधार पर 21% बढ़कर 66,091 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सोमवार को ये जानकारी दी। मार्च 2022 में कंपनी ने डीलरों को 54,643 इकाइयों की आपूर्ति की थी। कंपनी ने बयान में कहा कि मार्च में उसके यूटिलिटी वाहनों की थोक बिक्री 31% बढ़कर 35,976 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान अवधि में यह 27,380 इकाई थी। ये कंपनी के यूटिलिटी वाहनों की एक महीने के दौरान सर्वाधिक थोक बिक्री है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि पिछले महीने उसने 2,115 वाहनों का निर्यात किया है, जो एक साल पहले के 3,160 वाहनों की तुलना में 33% कम है। स्पाइसजेट लिमिटेड ने 1 अप्रैल से अपने कार्गो और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय स्पाइस एक्सप्रेस की स्पाइस एक्सप्रेस एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से अलग इकाई बना दी है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि इस कदम से स्पाइसजेट को 2,555.77 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ होगा और उसके नकारात्मक शुद्ध मूल्य में बड़ी कमी आएगी। इससे स्पाइस एक्सप्रेस द्वारा स्वतंत्र रूप से कोष जुटाना भी संभव हो सकेगा। स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि स्पाइस एक्सप्रेस को विभाजित करने का निर्णय कंपनी के दीर्घकालिक कारोबारी योजना के अनुरूप है और इससे लॉजिस्टिक्स कारोबार का मूल्यांकन बढ़ सकेगा। उन्होंने कहा कि कार्गो और लॉजिस्टिक्स इकाइयों को अलग करने का फैसला आने वाले समय में हमारी वृद्धि की नींव साबित होगा। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के कामकाज में कथित वित्तीय धोखाधड़ी की अखिल भारतीय स्तर पर जांच की अपील की गई थी। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के सामान्य आरोपों के आधार पर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की जांच संभव नहीं है। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हालांकि कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं, पीठ ने कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सामान्य आरोपों पर किसी प्रकार की जांच करना संभव नहीं है और याचिकाकर्ता को मामले पर आगे बढ़ने से पहले इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो योग्य वकील हैं और कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। पीठ ने आगे कहा, हम इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता चाहे तो संबंधित मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपायों से संबंधित है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।